صحابہ کرام کیسے قرآن کریم کے ساتھ شغف رکھتے تھے کہ جنگوں تک میں رات کو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. جنگ صبح جنگ ہوتی تھی, رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا. اس میں دنیا میں دنیا کا فوائد اگر آپ دیکھ لیں, دل کے امراض کا اس میں علاج ہے, ڈپریشن کا اس میں علاج ہے, زہریلے جانور کے کاٹے کا علاج ہے, جنون مرغی ہے کسی کو سایہ اس کا علاج ہے, بیماریوں کا علاج ہے, جان کنی کی تکلیف کا علاج ہے, نظر بد سے بچنے کا علاج ہے, شیطانی وسواس سے بچنے کا علاج ہے اس کے اندر. اگر اس کے فوائد دیکھیں تو بے شمار ہیں. جادو سے اس میں شفا ہے. برزخ کے اندر جو سوال جواب ہونے ہیں وہ بھی اس کی بیس پہ ہم دے سکیں گے جواب. اگر یہ نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے سکیں گے قبر میں, اس کے سوالوں کے جواب جو قبر کے ہیں. پھر آپ دیکھیں جو بھی دنیا میں جو عروج ہے وہ بھی اسی سے ملتا ہے. صحابہ کرام کو اسی سے عروج ملا تھا. حاجات اس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں مل رہا دعا کرنے کا, کیونکہ وہ اتنا قرآن میں مشغول رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والے سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. یہ میرا بندہ قرآن میں اتنا مصروف ہے کہ دعا ہی نہیں کر پا رہا, تو حدیث میں اللہ اس کو اس سے زیادہ دیں گے. مصیبتوں کا سے نجات اس کے اندر ہے, اور آخرت میں تو کھڑا ہو جائے گا یہ سفارش کرنے کے لیے, کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے. قبر کے عذاب سے یہ بچاتا ہے. کئی صورتیں ہیں جو وہاں پہ آ جائیں گی اور آ کے سائبانوں کی طرح سایہ بھی کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑیں گی کہ اللہ اس کی شفاعت کر دے, سفارش کریں گی. بلندی یہ درجات اس سے ہوں گے. جنتوں میں بھی اونچے درجے اگر لینے ہیں تو اس کے ذریعے ملیں گے. داخل بھی ہو گئے جنت میں تو اونچے درجے تو ہر ایک لینے کی خواہش رکھتا ہے نا, وہ بھی اس کے ذریعے ملیں گے. پھر بھی ہم اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, پڑھنا ہے پڑھنا ہے, اب انرول کر دیا اس لیے پڑھنا ہے. یہ بہت دکھ کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے. بھول جائیں سرٹیفکیٹس کو اور ہر گریجویشن اور ہر چیز کو, اور پھر اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں اس کو, کیا چاہتی ہوں میں اس سے, کیا یہ میرا پڑھنا بھی ہر سب دنیا کے لیے یا ہر سال آخرہ میں میں بیج ڈال رہی ہوں. سوال یہ کریں اپنے آپ سے. اگر تو صرف گریجویشن چاہتے ہیں تو ہر سب دنیا میں بیج ڈال دیا, ٹھیک ہے, ہو جائے گی گریجویشن, سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. لیکن اگر ہر سال آخرہ کے لیے چاہتے ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا, نمبر کتنے آ رہے ہیں اور کتنے نہیں آ رہے. بس مجھے قرآن کا ساتھ چاہیے. یہ تو وہ کتاب ہے جو لعلی حکیم ہے. اگلی اس کی صفات, یعنی اگلی اس کی دو صفات بیان کی گئی کہ علی ہے, بہت بلند ہے یہ, یعنی بڑی شان اس کی بتائی گئی کہ بہت شان والا ہے, حکیم حکمت والا ہے. حکمت والا یعنی اس کی اس میں جتنی باتیں ہیں نا حکمت سے بھری ہوئی ہیں. ہم لے کر آتے ہیں لوگوں کے جی وہ فلاں کسی وائس بندے نے اس کے اقوال زرعی ہیں, یہ اس کی فلاں کی کتاب پڑھو, یہ ابھی آئی ہے مارکیٹ میں بڑی زبردست, اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں, مطلب یہ کوئی کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں, بڑی زبردست ایڈوائس ہے اس کے اندر کیسے کرنا ہے کیسے زندگی کو چلانا ہے. وہ قرآن تو سب سے زیادہ حکمت سے بھرا ہوا ہے, اس میں ہے وزڈم. تم نے کچھ سیکھنا تو اس سے سیکھو. ہم خرید خرید کے کتابیں لاتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں خوش رہنے کے کس طرح سے طریقے ہیں, میاں بیوی میں کیسے اچھے تعلقات رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پڑھیں وہ بھی, لیکن جو حکمت قرآن میں ہے وہ کہیں سے آپ کو نہیں مل سکتی. پھر دوسرا حکیم کا معنی محکم, یعنی مضبوط ہے اس کی آیات, اس میں جو بھی ہے وہ بہت مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے. یہ قرآن کی پانچ صفات ہو گئی جو یہاں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد کہا گیا افا ندرب عنکم الذکر صفا ان کنتم قوما مسرفین, کیا بھلا ہم چھوڑ دیں تمہیں یہ ذکر بیان کرنا, تمہیں ذکر سے مطلب یہاں پہ ہے قرآن, کیا یہ ہم قرآن اتارنا چھوڑ دیں صفحا, منہ موڑتے ہوئے کہ تم اسے منہ موڑ رہے ہو اس وجہ سے, یا کہ اس کو ہم موڑ دیں تم سے, ان کنتم قوم مصرفین اس وجہ سے کہ تم مصرف قوم ہو, تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو, یعنی اس وجہ سے کہ تم نے تو ماننا نہیں, تم نہ مان رہے ہو, نہ تمہیں اس کی قدر ہے کہ تمہارے پاس کیا چیز آ رہی ہے, نہ تمہیں اس چیز کا کوئی احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہدایت کا بڑا انتظام تمہارے لیے کیا ہے. اس ریزن کی وجہ سے क्या हम इस जिक्र को उतारना छोड़ दें, क्या हम इस वही को का सिलसिला बंद कर दें, क्योंकि तुम्हें तो इसकी कदर है नहीं, तुम्हें ये सुनना पसंद नहीं है, तुम्हें इसकी तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं करते, क्या इसकी वजह से हम छोड़ दें ये सारा सिलसिला, ये वही का सिलसिला। सफन मतलब यहाँ पे है कि हम मोड़ दें इसको, हम दरगुजर करके, हम तुम्हारे जो तुम्हारा मुंह मोड़ना है, तुम इसकी तरफ चूंकि तवज्जो ही नहीं कर रहे, तो क्या हम इसकी वजह से इसको ना बयान करें। दूसरा इसका माना ये हो सकता है कि क्या हम इसको मोड़ लें तुम्हारे से, इस वही को हम तुमसे मोड़ लें, क्योंकि तुम ही नहीं तवज्जो करते, तुम हद से बढ़ गए लोग हो, बुराइयों में भी हद से बढ़ गए, शिर्क में हद से बढ़ गए, अल्लाह की नाफरमानियों में हद से बढ़ गए। अतः ये हाल था कि जब कुरान बयान किया जाता था, पढ़ा जाता था, तो आपको मालूम है हम पहले पढ़ चुके हैं कि उस वक्त वो शोर मचाने लगते थे, तो कहते थे शोर मचाओ कि ये कुरान सुनाई ना देता, तालियां बजाने लगते थे, वो गाने बजाने वाली लौंडियां ले आए थे, वो एक जगह पे गाने बजाने कर रही है, किससे कहानियां बयान हो रहे हैं ताकि लोग कुरान की तरफ ना जाए। तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ठीक है तुमने नहीं सुनना तो ना सही, मैंने उतारना ही नहीं। हम तो ये कहते हैं ना किसी को, नहीं तुम नहीं सुनना चाहती तो मैं भी नहीं सुनाना चाहती, ठीक है फिर जाओ। हम कोई बात कर रहे हो, दूसरा बंदा शोर करने शुरू हो जाए, आवाजें निकालने शुरू हो जाए कि हमारी आवाज दब जाए, तो हमें कितना गुस्सा आएगा और हम चाहेंगे कि अब उसके बाद हम कभी ना सुनाएं। अल्लाह ताला का कितना बड़ा रहम है कि उसने ये सिलसिला बंद नहीं फरमाया इनकी बदतमीजियों की वजह से, बल्कि फरमाया कि क्या हाँ भला हम छोड़ दें तुमसे ये जिक्र करना इस वजह से कि तुम एक हद से बढ़ने वाली कौम हो। तो अल्लाह ने एक सवाल किया, उसी में इनकार है, यानी हम नहीं छोड़ेंगे, हम फिर भी इसको उतारते रहेंगे, क्यों कि कोई तो होगा जो मानेगा, इनमें नहीं तो इनकी नस्लों में होगा। और वाकई अगर अल्लाह ताला कुरान करीम उतारने का सिलसिला छोड़ देते तो आज ये कुरान हम तक ना पहुंचता, सोचे ना फिर हम तक कैसे पहुंच सकता था, फिर ये बंद कर दिया जाता अगर उन काफरों की जो उन्होंने उनकी हरकतें थी उसकी वजह से, तो हम तक कैसे पहुंचता कि ठीक है तुम नहीं सुनना चाहते हम भी नहीं सुनाएंगे। तो उन्होंने नहीं सुना लेकिन अगली नस्लों ने सुना, फिर उन्हीं में से कई लोग ईमान ले आए। तो इसका मतलब है कि कोई सुने या ना सुने, इंसान को बताते रहना चाहिए आगे भी, हमें इससे ये सबक मिलता है, अगर अल्लाह ने नहीं छोड़ा सुनवाना तो हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं भी आज कोई सुन रहा, हो सकता कोई एक उनमें से निकल आए जो सुन ले, आज नहीं कोई सुन रहा, हो सकता है इनकी आगे नस्लों में से कोई हो जो सुन ले, आज नहीं सुन रहा हो सकता है कल सुन ले, कल उसके कोई हालात बदल जाए, किसी और तरह से उसके ऊपर असर हो जाए। तो कभी इससे डिसहार्ट ना हो कि लोग तो सुनते नहीं, लोग तो मानते नहीं, लोग आज तक मैं बताती जा रही हूं इनका तो अमल ही नहीं बदलता। मत डिसहार्ट हो, आपका काम है बता देना, सुना देना। उनके इसराफ की वजह से हमने नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला ने फरमाया ना अल्लाह यतिम नूरा हुआ लव करियल काफिरून, अल्लाह ने तो अपने नूर को मुकम्मल करना ही है चाहे काफरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। तो अल्लाह ने वही को उतार के छोड़ना और अल्लाह ताला ने उतारा, अल्लाह ने मुकम्मल किया इस दीन को चाहे काफरों ने कितना ही जोर लगा लिया कि किसी तरह ये पता नहीं हम ऐसे करेंगे तो हो सकता है ये सिलसिला ही बंद हो जाए, हो सकता है ये मायूस हो जाए और फिर ना लेकर आए ये वही की बात, हो सकता है इतने तंग पड़ जाए, इतने तंग हो जाए, इतना उनको तंग कर दो, इतना उनको सता दो कि उसके बाद ये कुरान की बात ही ना करें। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है, उसका करम है, ये उसने बयान करना नहीं छोड़ा, उसने ये वही का सिलसिला बंद नहीं फरमाया ना, अल्लाह का इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। ये कौन कर सकता है, ऐसा कौन कर सकता है जिसको कि बहुत ज्यादा मोहब्बत हो, खैर ख्वाही हो दूसरे की। फिर इसकी मिसाल आपको इस तरह देती हूँ, हम अपने बच्चों को कितनी दफा बताते हैं, कितनी दफा नसीहत करते हैं बताएं, क्या हम इस तरह से करते हैं कि आज बता दिया तो अब नहीं वो सुन रहे, कल बताया नहीं सुन रहे, तो परसों हमने कहा अब मैंने तुम्हें कभी नहीं बताना। हाँ हमारा तो ये हाल है कि बच्चे सुन सुन के थक जाते हैं, कहते हैं बस भी करें, अब वही रोज बातें बताती रहती हैं, हम फिर भी नहीं बताना बंद करते, फिर भी बताते रहते हैं। और कभी बच्चों के रवैये बहुत ही खराब हो जाए तो फिर हम एक दिन कहते हैं अब मैंने कभी नहीं बताना, उसके बाद फिर अगले दिन खड़े होते हैं बताने के लिए। ऐसा ही है ना, हम कभी नाराज हो भी जाए उनके रवैये देख के तो फिर से बताने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें उनकी शदीद खैर ख्वाही है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला अपने बंदों से इस कदर खैर ख्वाही रखता है और मोहब्बत रखता है कि अल्लाह ताला नहीं बंद करता वही का सिलसिला, और बंद कर देता तो हमारे पास कोई जगह ना होती रहनुमाई लेने के लिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए इस रहनुमाई को, इस हिदायत के सिलसिले को जारी रखा और इसको मुकम्मल फरमाया और इसको महफूज कर दिया कि हम जैसों तक भी पहुंच जाए। और आज भी हम तो कहते हैं ना कि वो तो नाकदरी करते थे मुशरिकी ना मक्का, तो ठीक है नाकदरी करते थे, कभी चीटियां बजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इस तरह से उसका हक नहीं दे रहे जैसे कि होना चाहिए। लेकिन आज भी जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं वो कितना हक अदा कर रहे हैं। वो कुरान जब पढ़ा जा रहा हो, सुना जा रहा हो, तो उनकी दिलचस्पी कितनी होती है ये बताएं। क्या ये सलूक उसी वक्त होता था कुरान के साथ या आज भी हो रहा है? फर्क सिर्फ ये है कि आज हम कहते हैं हम मुसलमान हैं और फिर भी हम ये सलूक कर रहे हैं, और उस वक्त वो कहते थे कि हम नहीं मानते। आज हम कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, ये बेस्ट किताब है, फिर भी हमारी कोई तवज्जो नहीं, फिर भी हम इसकी तरफ ये वक्त नहीं लगाना चाहते और इसके लिए वक्त लगाने को फजूल काम समझते हैं, फारिग लोगों का काम समझते हैं। इसको सीखना समझना हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि लोग हैरान होते हैं और सवाल करते हैं ये फर्ज है क्या, ये फर्ज है कुरान को समझना? नहीं, आज तक उनको यही नहीं पता कि ये कुरान करीम को समझना ये वाकई कोई जरूरत भी है हमारी या नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, खाना खाना फर्ज है? क्यों खाते हैं, क्या फर्ज है ये बताएं, इसका जवाब बताएं, क्या कहेंगे आपके फर्ज है कि नहीं है? तो जैसे खाना आपके जिस्म की गिजा है, इसी तरह ये रूह की गिजा है। आप मुझे बताएं ये फर्ज है कि नहीं है? रूह बीमार हो जाती है, कमजोर हो जाती है, नहीफ हो जाती है जब उसको ये गिजा ही नहीं मिलती, फिर भी हम सवाल करते हैं फर्ज है या नहीं। कौन बताए इनको कि कितना को फर्ज है? अल्लाह अकबर। तो ये बता दिया गया कि देखो वो लोग तो ऐसे करते थे, उन्होंने तो नाकदरी की। आज हमारे हालात क्या हैं? आज लोगों को इस कुरान की दावत देना, ऐसे लोग समझते हैं जैसे कि पता नहीं ये कोई, इनको हमसे कुछ चाहिए है जिसकी वजह से हमारे लिए इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, इतना हमें मतलब कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या चाहिए हमसे, दूर भागने लगते हैं कि कहीं ये नजर ना आ जाए लोग, अगर नजर आ गए तो ये फिर हमें कोई दावत देने बैठ जाएंगे। तो इसके ऊपर भी कुरान की तरफ बुलाने वालों को डिसहार्ट नहीं होना, इसके ऊपर भी उनको हिम्मत हार के बैठ नहीं जाना, ये काम करते रहना है दावत का, बुलाते रहना है इस तरफ, पहुंचाते रहना है, और इसको दिल पे मत ले लिया करें, हर्ट ना हो जाया करें कि देखो उसने तो ये कह दिया, देखो आगे से ये ठीक है। थोड़ी देर इंसान के ऊपर, इंसान ही है ना हम सब, थोड़ी देर दिल खराब होता है कि ये सलूक अल्लाह के कलाम के साथ, इस पे तो दुख होता ही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी होता था, लेकिन ये हिम्मत को कम ना कर दे, इसकी वजह से हिम्मत हारनी नहीं है, बस चलते रहना है। आज देखें जितने गफलत के अंधेरे हैं, जहालत के अंधेरे हैं, और दुनिया की मोहब्बत में के अंधेरे या उसमें लोग डूबे हुए हैं, दुनिया के रस्मों रिवाज जो हैं उनके अंदर जकड़े हुए हैं, आज भी कुरान ही है जो इस दीन को जिंदा करेगा। वरना दीन का नाम लेने वाले तो हैं मगर जिंदगियों से दीन गायब है, जिंदगियों में नहीं है, तो कैसे आएगा जिंदगियों में? क्या सिर्फ नाम के मुसलमान हो जाना काफी है? ये जिंदगी में ऐसे आएगा जब कुरान जिंदगी में आ जाएगा और जब ये समझ आने लगेगा। और इसके लिए उसी तरह खैरख्वाही करनी है जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि सुना सुना के हम बस उनको भी रट गया है, हमें भी पता है हमने क्या बोलना है, फिर भी हम सुनाते ही चले जाते हैं और थकते ही नहीं है। ये वो मैदान है जिसमें वो लोग ही काम कर सकते हैं जिनके अंदर इस लेवल की खैरख्वाही हो, है ना। जिसमें ये नहीं है ना, वो फिर कुछ दिन में ही थक जाएंगे। खैरख्वाही जरूरी है, इंसानियत की खैरख्वाही, चाहे अपने मुसलमान लोगों को बुलाना हो अल्लाह की तरफ या गैर मुस्लिमों को। वह कम अरसलना मिन नबीयिन फिल अव्वलीन, और कितने ही भेजे नबियों में से हमने पहलों में। कम का मतलब ये क्या है? बहुत सारे, यानी कम वैसे सवाल के लिए भी आता है कि कितने, मतलब ना सवाल किया जाए कितने भेजे हमने, यानी 1,24,000, ये सवाल के लिए नहीं आ रहा, बल्कि ये क्या है, कम कितने ही भेजे। जैसे हम ये उर्दू में भी बोलते हैं, कितने ही जमाने गुजरे, कितने ही लोग आए और चले गए, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो इसी तरह ये है कि कितने ही भेजे हमने नबियों में से पहलों में। वमा यातीहिम मिन नबी है, और नहीं आया उनके पास कोई नबी, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर वो थे साथ उसके मजाक उड़ाने वाले। हमेशा लोगों का ये रवैया रहा है कि वो मजाक उड़ाते रहे नबियों का। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है नबी आपके साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक तसल्ली दी गई कि ए नबी, अगर ये मजाक उड़ाते हैं, ये ठट्टे करते हैं, लेकिन इंसान के लिए ना मजाक सहना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मसलन आप किसी मजलिस में जाएं, वहां पे सारे लोग मिलके, ये बहुत ही गिरी भी हरकत होती है लेकिन हमारे यहाँ होती है, कि एक के पीछे पड़ जाते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं रिकॉर्ड लगाना, कहते हैं आज उसका बड़ा रिकॉर्ड लगाया हमने। ये कोई कोई महजब बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं, बहुत ही गिरी हुई बात है, बहुत ही गिरा हुआ अखलाक है जो लोग ऐसा करते हैं कि एक को पकड़ लेते हैं फिर जो उसके पीछे पड़ते हैं ना, कि बस जिसको रिकॉर्ड लगाना कहते हैं वाकई रिकॉर्ड लगा देते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं कि उसके अगले पिछले ही चटे कच्चे चटे बस खोलते हैं, और फिर सब चूंकि एक तरफ हो जाते हैं, वो बेचारा क्या करे फिर। तो वो तो पानी पानी होता रहता है ना, तो वो कुछ बोल सकता है ना, माइंड करने की पोजीशन में होता है, वरना फिर और मजाक उड़ाया जाएगा ना, वहां से उठने की पोजीशन में होता है। तो कभी अगर आप इस सिचुएशन में रहे हो तो आपको पता होगा कि उस वक्त दिल पे क्या गुजरती है। ये चीज दुश्मनियां पैदा करती है, ये चीज दूसरे की नजरों से आपको गिरा देती है अगर आप ये हरकत करते हैं। कभी किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती है ऐसे लोगों से कि जो इस किस्म की हरकतें करें। तो मुशरिकीन का काम ये था, इसी तरह वो ठट्टे लगाते थे। और देखें सारे एक तरफ मिल गए और एक बंदे के ऊपर यानी मजाक और हूटिंग, और जहां से गुजर रहे हैं वहां पे जुमले कसना और ऐसी सी बातें करना और हंसना। ये तो बड़ा कहते हैं क्यामत आनी है, लेकर के नहीं आते क्यामत, कब आएगी तुम्हारी क्यामत? यानी जहां जा रहे हैं वहां पे इस किस्म की बातें। सोचिए एक इंसान के ऊपर साइकोलॉजिकली क्या गुजरता होगा। अल्लाह ताला ऐसे वक्त में तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि जब इंसान को पता चलता है ना, मेरे अलावा भी और लोग इससे गुजरे हैं, मैं पहला नहीं हूं, फलां के साथ भी ऐसा हुआ, फलां के साथ भी, तो उसको थोड़ी तसल्ली हो जाती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत सारे हमने पहले नबी गुजरे और कोई नबी ऐसा नहीं था जिसके साथ ये काम ना हुआ, हर एक के साथ लोगों ने मजाक उड़ाया। तो अगर आप ऐसी हैं कि आप कहीं जाती हैं तो आपको लोग कहते हैं तुम क्या मुल्ला नहीं बन गई, तुमने क्या हिजाब शुरू कर दिया, तुम क्या ये दुपट्टे के हिजाब कस के घूमती हो, क्या लग रही हो तुम, अपनी शक्ल देखी है तुमने, ये हो गया तुम, क्या तुम तो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट हो गई तुम, बस ये बस आज ये शुरू हो गई, अब इनके लेक्चर शुरू हो गए, लो भाई आ गई हैं ये। जब कोई इस तरह की बातें करे, कभी ये सोचा करें कि ये तो जो दुनिया के बेस्ट लोग थे ना, बेस्ट जो आला टॉप के लोग थे, वो अंबिया है ना, ये उनके साथ काम हुआ, तो मैं क्या चीज हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो अमल भी बिल्कुल नाकिस है। अगर मुझे लोगों ने चार बातें सुना दी तो कौन सी ऐसी मेरी शान में गुस्ताखी हो गई कि हम फौरन छोड़ने पे खड़े हो जाते, भूल जाते, अब नहीं मैंने करना, फलाने मेरे पीछे पड़े हुए हैं, फलाम मेरी मुझे ऐसे बातें सुनाते हैं, बस मैं इतनी डिसहार्ट हो गई हूं ना अब, बस मैंने छोड़ ही देना ये सब कुछ। मेरे खानदान वाले मुझे बातें करते हैं, मेरे फलाने दोस्तों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो अब नहीं मुझसे सहा जाता। ये नहीं करना, ये तो सोच लें कि हमें एक नबियों की एक सुन्नत है कि वो बर्दाश्त करते रहे और चलते रहे, हमें उसमें से अगर हिस्सा मिल जाता है, हमें हम भी उस काफले के एक एक छोटे से अदना से एक उसके हिस्सा बन जाते हैं, तो ये तो बड़ी खुशकिस्मती है। हम खैर वैसी तो हमारे साथ कभी नहीं हुई चीजें जो उनके साथ होती थी, लेकिन चलो एक अशरे अशीर भी अगर हो गई तो कम अज कम उस काफले का तो हिस्सा बन गए ना, जिसके आगे आगे पैगंबर है। तो हम भी वो जिसको कहते हैं ना उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना, तो चलो हम भी कुछ दो चार बातें सुन के हम भी वो शहीदों में अपना नाम लिखवा लें। क्यों डिसहार्ट होते हैं इससे, क्यों छोड़ने पे बैठ जाते हैं कि पहले ही अभी आज किसी ने कहा तो कल तो तुझे मुझे बस इस चीज का बुखार लग गया कि अब मैं छोड़ दूंगी। बस लोगों की बातों के ऊपर ही छोड़ना होता तो फिर पैगंबर छोड़ देते काम, बड़ी उनको इज्जतें करनी थी लोगों ने फिर, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। अब उसने कह दिया, उसने मेरे साथ ये सलूक कर लिया, वो मेरे साथ अच्छी तरह नहीं बोल रही, वो फलानी मेरे साथ ऐसे करती है, मैं तो छोड़ के जा रही हूं। ये कौन सा तरीका, इसका मतलब आप इस कलाम से या इस दीन से तो आप सिंसियर नहीं है, आपको बस लोग मैटर करते हैं, लोगों की बातें, लोग अच्छा करेंगे तो फिर मैं चलूंगी, लोगों ने बुरा कर दिया तो फिर मेरी सारी जो एनर्जी है वो खत्म हो गई है, वो सारा मेरा जोश ठंडा हो गया बस चार बातें सुनने से। पैगंबरों के साथ तो कभी नहीं ऐसा हुआ। तो अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, और रहती दुनिया तक जो नबियों के रास्ते पर चलेगा वो भी इस बात को याद करके चले कि इस्तेजा होगा, मजाक होगा, हूटिंग होगी, लोग सिकरे कसेंगे, लोग नाराज भी होंगे, लोग बातें भी बनाएंगे, ताने भी देंगे, फिर भी चलते रहना और परवाह नहीं करनी, ये सोच के कि बड़े बड़े पैगंबरों के साथ ये हुआ है, मैं क्यों पीछे हटूं। फिर उसके बाद अहलकना अशद मिनहुम बतशा, तो हलाक कर दिया हमने सबसे ताकतवर को उनमें से पकड़ में, यानी हमने हलाक किया उनमें से जो ऐसे लोग थे जो बहुत ताकतवर थे। ये अहले मक्का क्या ताकतवर होंगे, हमने तो उन उनको हलाक कर दिया जो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे और पकड़ में बहुत ज्यादा ताकतवर थे। पकड़ में ताकतवर होना क्या होता है, यानी अल्लाह माफ करे, कई लोग इतने जालिम होते हैं ना कि जब वो अपने दुश्मनों को भी पकड़ते हैं तो उनका बहुत बुरा हाल कर देते हैं। अगर आप लोगों को हिस्ट्री थोड़ी सी पता हो तो आपने सुना तो जरूर होगा तातारियों के जुल्म जो वो करते थे जब वो किसी जगह पे जाते थे, यानी दुनिया में और भी कौमों ने रूल किया और कॉन्कर किया लैंड्स को, लेकिन जिस तरह तातारियों के जुल्म की बात आती है और जैसे चंगेज खान, हलाकू खान, इनकी जो बातें आती हैं, यानी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा, कि कैसे खोपड़ियों के मीनार लगा देते थे और क्या क्या उनके मजालिम होते थे जब किसी जगह जाते थे, तो इसी तरह हमने उनको अब ऐसे लोगों से कैसे लोग कामते हैं, यानी उनका पता चल जाता था ना कि यहां से ये चल रहे हैं और फलां जगह के लिए हमले के लिए आ रहे हैं, तो लोगों के पहले ही पित्ते पानी हो जाते थे कि बस तातारी आ रहे हैं, चंगेज खान आ रहा है, तो वो वैसे ही हिम्मत हार देते थे, अब क्या होगा हमारा। यानी इतनी इतनी ताकतवर कौमें गुजरी हैं पहले, और आद और समूद और ये सब और फिरौन और नमरूद और क्या क्या ताकतवर लोग जिनसे लोग कांपते थे थर थर, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत सख्त थी, उन जैसों को भी हमने हलाक कर दिया, तो ये क्या चीज है अहले मक्का। नहीं आप सोचिए, अहले मक्का तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, वो इतने ताकतवर थे, पकड़ते थे ना जब दुश्मनों को तो क्या हाल उनका कर देते थे। आप उसी से देख ले फिरौन ने क्या किया था जादूगरों के साथ, और फिरौन क्या करता था मासूम बच्चों के साथ जो अभी पैदा हुए होते थे, यानी कोई रहम नहीं, कोई उनके अंदर कोई डिग्निटी नहीं, कोई एथिक्स ही नहीं, इतने जालिम थे। तो फिर क्या हुआ उनके साथ, हलाक कर दिया, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मदा मसलुल अव्वलीन, और गुजर चुकी है मिसाल पहलों की, यानी मिसाल से मतलब यहाँ पे क्या, अजाब, अजाब की मिसालें गुजर चुकी हैं पिछली कौमों की, और हम सब जानते हैं क्या क्या अजाब उनके ऊपर आए। तो ये जो कौमें नबियों का मजाक करती रही, अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ती रही, बड़ी ताकतवर थी, बड़ी मालदार थी, बड़ी लोगों को पकड़ती थी तो बहुत सख्ती से पकड़ती थी, लेकिन फिर देख लो उनकी दास्तानें भी आज तक पता है सबको, अजाब उनके ऊपर कैसे कैसे आए।